100 बेड का अस्पताल आपने कहीं देखा है? 100 बेड के अस्पताल में कितने डॉक्टर चाहिए, कितनी नर्सें चाहिए, कितनी दवाइयां चाहिए और कितना खर्च चाहिए? आपको मालूम है क्या कितने कमरे चाहिए, कितने इंस्ट्रूमेंट चाहिए? 100 बेड का अस्पताल किसे कहते हैं? बेटे, यह 100 बेड का अस्पताल है। 100 बेड का चल जाए तो बहुत है,
इससे ज्यादा का नहीं।
नहीं महाराज जी,
1000 का कैसा रहेगा? नहीं बेटे, मैं 1000 को कंट्रोल नहीं कर सकता।
इसलिए बनाकर क्या करूंगा?
महाराज जी,
आप इमारत बनवा लीजिए, पैसा हम दे देंगे। बेटे, तू पैसा तो दे देगा, पर मैं कंट्रोल कैसे करूंगा?
इसलिए छोटा सा आश्रम बना रहे हैं, फिर उसमें आपको नंबर से बुलाएंगे, बुलाकर आपको वही समीपता देंगे जैसे कि हमारे गुरुदेव हमको अपने समीप रखते हैं।
और समीपता का जो लाभ देते हैं, समीपता की जो शक्ति देते हैं, इसमें भी हमने वही किया है। इसमें भी आपको कुछ क्रियाकृत्य नहीं कराया है। सवेरे हम जो कराते हैं उसमें अनुदान हमारे गुरुदेव के, निर्देश हमारे और भावना चित्र आपके, हम तीनों मिलकर के काम करते हैं।
फिर देख लेंगे,
ज्यादा जरूरत पड़ेगी और आप ध्यान कर सकते होंगे, धारण कर सकते होंगे और आप में वह सामर्थ्य होगी तो हम ज्यादा वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, ज्यादा करंट बढ़ा सकते हैं, पर देखना आपको ही पड़ेगा, संभालेंगे तो आप ही। अभी आपकी इस हैसियत में नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं महाराज जी,
आप दे दीजिए।
बेटे, हम कैसे दे सकते हैं? आपकी मर्जी के बिना सूरज भी आपके कमरे में नहीं घुस सकता, आपकी मर्जी के बिना हवा भी आपके कमरे में नहीं आ सकती। अगर आपकी हैसियत और आपका व्यक्तित्व इस लायक नहीं है कि देवताओं की शक्तियां, भगवान की शक्तियां, सिद्ध पुरुषों की शक्तियां आपके भीतर आएं, प्रवेश कर सके, तो बेटे कैसे आ सकेंगी? आपने तो दरवाजा बंद कर लिया है, तो कोई नहीं आएगा और आप खाली हाथ रहेंगे। इसलिए पूजा उपासना में क्रियाओं की बात खत्म। वास्तव में यह रास्ता ऐसा है जिसमें सिखाया जाता है कि देने की अपेक्षा मिलता 100 गुना ज्यादा है। हमने जो किया है और हमारे गुरु ने जो सिखाया है और हमसे कराया है, उसकी अपेक्षा 100 गुना ज्यादा दिया है। बेटे, हम भी आपको अपनी नाव में बिठा लेंगे, जैसे हमारे गुरुदेव ने हमको अपनी नाव में बिठा लिया था। अपनी नाव में बिठाकर हम आपको पार कर देंगे, जैसे कि हमारे गुरुदेव ने हमको पार कर दिया है।
आप हल्ला मत मचाना, शांतिपूर्वक बैठे रहना तो आप पार हो जाएंगे।
नाव में उचक मचक मचाएंगे तो हमारी नाव को भी डुबो देंगे और आप तो डूबेंगे ही,
इसलिए चुपचाप बैठना ही ठीक है। चुपचाप बैठने की बात का मतलब है कि अध्यात्म के प्रति निष्ठा पैदा कर लीजिए। अध्यात्मवादी की मन स्थिति कैसी हो सकती है, यह भी तो आपको जानना चाहिए। अध्यात्मवादी को अपने जीवन के क्रियाकलापों में कुछ हेर फेर करना पड़ता है, यह भी तो जान लीजिए।
यह सब बातें जानेंगे नहीं तो बेटे हमारी नाव को और डुबो देंगे, फिर हम आपको अपनी नाव में नहीं बिठाएंगे। अगर हम आपको अपनी नाव में बिठाएंगे तो हम आपको यह यकीन दिलाते हैं कि हम डूब जाएंगे, परंतु आपको पार करेंगे।
मित्रों, राजा युधिष्ठिर के पास एक कुत्ता था।
उनको लेने के लिए जब विमान आया तो उन्होंने कहा कि हम चलेंगे और हमारा कुत्ता चलेगा। नहीं साहब, कुत्ता तो स्वर्ग में नहीं जा सकता, तो हम भी स्वर्ग में नहीं जा सकते।
जब उनका कुत्ता विमान में बैठा तब युधिष्ठिर भी बैठे। युधिष्ठिर भी गए थे और कुत्ता भी गया था।
बेटे, आप कुत्ते तो नहीं हैं, हमारे बच्चे और भतीजे हैं। आपको तो पार करना ही होगा। आपकी मुसीबतों में हम पहले सहायता करेंगे, पीछे अपनी मुसीबतों पर ध्यान देंगे।
परंतु आप पहले अध्यात्मवादी तो बनिए, सही दृष्टिकोण तो अपनाइए, अध्यात्म को समझिए तो सही, अध्यात्म के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको तो जानिए।
अध्यात्म में क्या करना पड़ता है इतना तो समझ लीजिए, इतना भी नहीं समझेंगे तो मैं क्या करूंगा? आप इन क्रियाकृत्यों को ही तोप मानकर चलेंगे तो बेटे मैं क्या करूंगा? क्रियाकृत्यों और कर्मकांडों को ही आप सब मानकर चलेंगे तो मैं क्या करूंगा, बताइए। क्रियाकृत्यों के साथ साथ में जीवन में हेर फेर करना आवश्यक है। मैं चाहता था कि आप यहां से जाएं तो क्रियाकृत्य तलाश करने के बजाय बार बार क्रियाकृत्यों के बारे में पूछताछ करने के बजाय ये बातें पूछें कि अध्यात्मवादी होने के नाते आपको अपने जीवन में क्या हेर फेर करने पड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि यहां से जाते ही आपके जीवन में कुछ हेर फेर करने की शुरुआत दिखाई पड़े,
आपके भीतर कुछ कायाकल्प दिखाई पड़े,
अतः आप यहां से जाने के पश्चात अपने जीवन में अवश्य हेर फेर करना।
मित्रों,
मैं थोड़ी सी बातें बताता हूं, ज्यादा बता दूंगा तो आप पूरा नहीं कर सकेंगे। एक तो मैं चाहता हूं कि अपने ऊपर संयम रखने की आपकी आदत यहीं से शुरू हो जाए। खान पान के बारे में मैं चाहता हूं कि आप सारी इंद्रियों पर तो काबू नहीं कर पाएंगे, पर अपनी जबान पर काबू करना यहीं से शुरू कर दें। नमक और शक्कर छोड़ने की बात, अस्वाद व्रत की बात मैं लोगों से हमेशा कहता रहता हूँ। गांधी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दसों इंद्रियों में से सब पर काबू करना हो तो सबसे पहले जीभ पर काबू कीजिए।
जो आदमी जीभ पर काबू कर लेगा, धीरे धीरे वह सब इंद्रियों पर विजय पालेगा।
जिसका अपनी जीभ पर काबू नहीं है, वह और इंद्रियों पर काबू नहीं कर सकता। मैंने आपको नमक की बावत कहा था, अस्वाद व्रत की बावत कहा था। पिछले शिविरों में मैंने इसे चलाया भी था, लेकिन उस शिविर की फजीहत देखकर हमने इसको बंद भी कर दिया। एक दो आदमी बाजार में पकौड़े खाते पाए गए तो हमने कहा कि भाई, ऐसा करने से क्या फायदा हो गई,
ये कमबख्त स्वयं भी मरेंगे और हमको भी मारेंगे,
हमारी भी बदनामी करेंगे और स्वयं भी बदनाम होंगे।
ये तो इसलिए आए हैं कि गुरुजी अपने आशीर्वाद से हमारे बाल बच्चे पैदा कर देंगे, बस।
वे अध्यात्म के लिए कहाँ आए हैं?
वे पूजा उपासना को, अध्यात्म को कहाँ जानते हैं?
वे तो हरिद्वार का तमाशा देखने और ऋषिकेश का तमाशा देखने के लिए बेकार में आ जाते हैं और ऊपर से कहते हैं कि शिविर में आए हैं और शिविर की मर्यादा को खराब कर देते हैं।
मित्रों,
इसलिए हमने इसमें बदलाव किया है, पर मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से जाने के बाद अपनी जीभ पर काबू रखना सीखें। अस्वाद व्रत लगातार न कर सकते हो तो सप्ताह में एक दिन कर लिया करें। मैं चाहूँगा कि एक दिन तो कम से कम नमक और शक्कर के जायके से बचें। नहीं महाराज जी, नमक नहीं खाएंगे तो कमजोर तो नहीं हो जाएंगे?
कमजोर हो जाएगा तो पहले बिना नमक का भोजन कर लिया कर, पीछे से नमक खाकर पानी पी लिया कर, अस्वाद व्रत तो भंग नहीं होगा।
नहीं होगा, नमक में क्या आफत है? नमक कोई जहर है। हम तो यही चाहते हैं कि आपकी जीभ जो लप लप खाती रहती है, उस पर काबू करें, उस पर कंट्रोल करें,
उसको पकड़कर मारें।
बेटे, नमक में कोई आफत नहीं है, शक्कर में कोई आफत नहीं है और बिना अनाज के भी कोई आफत नहीं है, उपवास में भी कोई आफत नहीं है। दक्षिण भारत में जब उपवास होता है तो गेहूं खाते हैं।
साहब,
आज तो हमारा उपवास है,
आज तो हम फलाहार करेंगे। क्या फलाहार करेंगे? गेहूं खाएंगे,
गेहूं की रोटी खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे।
एकादशी के दिन चावल कैसे खाएंगे? एकादशी के दिन तो फलाहार करेंगे।
जैसे अपने यहाँ साबूदाना फल माना जाता है, वैसे ही वहाँ गेहूं फल है। जैसे अपने यहाँ सिंघाड़ा फल है, ऐसे ही दक्षिण भारत में गेहूं फल है।
मित्रों,
इससे क्या लेना देना है? मुख्य सवाल यह है कि आप अपनी जीभ पर काबू कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अस्वाद व्रत का पालन करें और जहाँ तक संभव हो सके आज से अपने ब्रह्मचर्य और संयम की बावत ध्यान रखें। बेटे, शरीरों में कुछ नहीं है,
ये लिफाफे हैं। ये लिफाफे न जाने कैसे कैसे जिंदा हैं।
हम और आप न जाने कैसे कैसे जिंदा हैं और न जाने कैसे कैसे अपना काम कर रहे हैं। न जाने कितना कम तेल है कि इस हिसाब से इस बत्ती का ज्यादा दिन तक जलना चिराग का जलना मुश्किल मालूम पड़ता है। इन हड्डियों में जो ग्रीस चाहिए वह है ही नहीं। हड्डियां बोलती हैं कड़कड़ और जब बैठते हैं तो घुटने कर जाते हैं और जब अंगुली चटकाते हैं तो वे खटखट बोलती हैं। क्या बात है, इसमें वह ग्रीस नहीं है। बेटे, इसमें ग्रीस को रहने दे, बुढ़ापे में काम देगी। इसके पीछे क्यों लाठी लेकर पड़ा हुआ है? इसकी सारी ग्रीस को तबाह करने और निचोड़ने के लिए क्यों आमादा हो गया है? आत्महत्या करने के लिए क्यों उतारू हो गया है? अपने ऊपर जरा रोकथाम कर।
रोकथाम नहीं करेगा।
नहीं महाराज जी,
रोकथाम नहीं करूंगा। रोकथाम कर बेटे, रोकथाम करेगा तो तेरे लिए काम आएगा।
तेरी आंखों में रोशनी बनी रहेगी,
तेरे चेहरे पर कड़क चमक बनी रहेगी, तेरे दिमाग की याददाश्त सही बनी रहेगी। बुरा तेल डालेगा तो खत्म हो जाएगा, मरेगा और भागेगा
और क्या करेगा।
इसलिए मित्रों,
मैं कहता हूँ कि आप संयम रखना सीखिए,
इंद्रियों पर संयम रखना सीखिए, कामेंद्रियों पर संयम रखना सीखिए।
शादी करने का मतलब दो भाई हैं जो राम लक्ष्मण के तरीके से हैं। जिंदगी की नाव खेने के लिए दो मल्लाह हैं। जब नाव खेते हैं तो एक मल्लाह इधर से खींचता है और एक उधर से खींचता है। हमारे दो हाथ हैं। यह इसके लिए नहीं है कि एक हाथ एक को काटे और दूसरा उसको काटे,
अर्थात मर्द औरत की सेहत को खराब करे और औरत मर्द की।
इसलिए आप ब्याह नहीं करते,
ब्याह का यह उद्देश्य नहीं है। मित्रों,
क्या करना पड़ेगा? आप इस बारे में ध्यान रखें।
अगर आप यह ध्यान रखेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने योगाभ्यास और वह क्रिया कृत्य सीख लिया
जिसके लिए आप बार बार पूछते रहते हैं कि विधि विधान बता दीजिए।
चलिए हम बता देते हैं। पहली विधि है संयम। इसका अगर आप पालन करेंगे तो आपको कुछ चमत्कार दिखाई पड़ेगा। आपकी सेहत को लाभ मिलेगा और आपको मानसिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। मित्रों,
विधि बताने के साथ साथ मैं कुछ और चीज भी चाहता हूँ कि आप यहाँ से जाने के बाद में अपनी जिंदगी की बाबत कुछ नए तरह के दृष्टिकोण लेकर जाया तो अच्छा है।
आप जब यहाँ से जाया तो माली की हैसियत लेकर के जाया।
माली की यहाँ छोड़ जाए।
आप किसके मालिक हैं? आप किसी के मालिक नहीं हैं।
आप सिर्फ माली हैं।
माली हो करके जाएंगे तो मैं समझूंगा कि जैसे हम अपने गुरु के पास जाते हैं और अपना सब सौंप कर आते हैं, समर्पण, शरणागति, विसर्जन करके आते हैं, आप भी उसी तरीके से करें। समर्पण का मतलब है कि हम अपनी मालिकी खत्म करते हैं और अब सिर्फ माली के तरीके से काम करेंगे। आप माली के तरीके से काम कीजिए। आप स्त्री के मालिक नहीं हैं। आप यह मत कहना मैं तेरा मालिक हूँ, वरन यह कहना कि मैं तेरा माली हूँ। तेरी सेहत को अच्छा रखने के लिए, तुझे खुश बनाने के लिए, तेरे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए माली के तरीके से ख्याल रखूंगा। बच्चों के माली, माँ बाप के माली, समाज के माली, धन संपदा के माली बनिए, मालिक नहीं।
अगर आप मालिक बनेंगे तो सांप हो जाएंगे।
जिस तरीके से जमाखोर बुढ़ा जब मर जाता है तो अगले जन्म में सांप हो जाता है और घड़े के ऊपर फन फैलाकर बैठा रहता है कि कोई लेने आएगा तो काट खाएगा, न खाएगा और न खाने देगा।
अभागे मालिक बनेगा तो सांप बनेगा।
इसलिए माली बनकर रहेगा तो अपनी हर चीज का बेहतरीन उपयोग कर सकेगा। मालिक होगा तो जमा करेगा और अहंकार पैदा करेगा। जो जमा करेगा उसका इस्तेमाल सही आदमी नहीं करेंगे, गलत आदमी इस्तेमाल करेंगे और उनकी अनावश्यक रूप से हानि होगी और तू उस पाप का भागीदार होगा। इसलिए हर चीज का इस्तेमाल माली होकर कर।
मित्रों, दूसरा है मानसिक मनोनिग्रह। हाँ महाराज जी, मन का संयम करना बताइए। बेटे, मन का संयम करने के लिए मालिकी छोड़ माली बन जा। मालिकी छोड़ देगा तो तेरी सारी की सारी क्रियाओं में हेर फेर पड़ जाएगा। फिर बीबी के साथ तेरा सलूक कुछ और हो जाएगा। माली पड़े की जरूरत को समझता अपनी जरूरत को नहीं।
फिर आप अपनी जरूरतों के लिए बीबी से फरमाइश नहीं करेंगे, वरन उसकी जरूरतों को ध्यान में रखेंगे।
उसकी सेहत की, प्रसन्नता की, योग्यता की और खुशी का ध्यान रखेंगे।
आप बच्चों के माली बनिए और उन्हें सुयोग्य बनाइए।
जिस तरीके से बिनोवा की माँ ने अपने तीनों बच्चों बिनोवा, बालकोवा और बिठोवा को बनाया,
बनाने के लिए क्या किया? किया यह कि अपने आप को और घर के वातावरण को ऐसे ढांचे में ढाल दिया कि जो बच्चे उसमें विकसित हुए वे वैसे ही होते चले गए।
आप अपने घर का वातावरण बदलिए। वातावरण बदलने के लिए अपना चाल चलन ठीक कीजिए।
नसीहत देने से कोई कुछ नहीं बदलने वाला है।
बच्चे आपकी नसीहत नहीं सुनना चाहते।
आपकी क्रिया, आपके वाइब्रेशंस और आपके विचार जो हर जगह हवा में फैलते रहते हैं, बच्चे उन्हीं को पकड़ते हैं और तदनुरूप ढलने लगते हैं। आप स्वयं तंबाकू पीते हैं और बच्चों से कहेंगे कि आप तंबाकू मत पीजिए, लेकिन वह 100 बार तंबाकू पिएगा।
क्यों?
क्योंकि आप उसको नसीहत देना चाहते हैं, हुक्म देना चाहते हैं कि माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। आप कहिए मत, चुप रहिए और पहले स्वयं अपने माता पिता की सेवा कीजिए ताकि आपका बच्चा आपकी नकल करना सीख जाए।
आप संयमी बनिए, ठप्पा बनिए, सदाचारी बनिए ताकि आपके घर का वातावरण बदलता हुआ चला जाए।
आप समाज को रहने दें, पहले अपने शरीर की, मन की और अपने कुटुंब की सेवा कर लें। इसके लिए भी आपको नए ढंग से ढांचे में अपने आप को कसना पड़ेगा। संपदाओं में पैसे की संपदा के बारे में अपने विचार बदल देने पड़ेंगे। आपको अपने भीतर यह विचार धारण करना पड़ेगा कि गुणों की संपदा ही असली संपदा है और नकली संपदा वह है जिसको हम मकान कहते हैं, पैसा कहते हैं, खेती बाड़ी कहते हैं, बैल कहते हैं, गाय कहते हैं, मोटर गाड़ी कहते हैं।
ये बिल्कुल नकली हैं। ये नकली संपदाएं ठहर भी नहीं सकती। नकली संपदाएं जब आती हैं तो हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती हैं।
नकली संपदाएं हमारे भीतर घमंड और अहंकार पैदा करती हैं। नकली संपदाएं हमारे पड़ोसियों के साथ वैर और विग्रह करा देती हैं, ईर्ष्या, द्वेष पैदा करा देती हैं।
मित्रों,
असली संपदाएं वे हैं जिनको हम गुण, कर्म और स्वभाव कहते हैं।
आप इनका विकास करना शुरू कीजिए। अपने कुटुंब में नई परंपराएं डालें, जैसे उन्हें सुशील बनाने, सहनशील बनाने, प्रगतिशील बनाने की कोशिश करें। बच्चों को भी, बीवी को भी, बाप को भी, हर एक को प्रगतिशील बनाने का प्रयत्न कीजिए। प्रगतिशील होना, मशक्कत, मेहनत करना, परिश्रमी बनना आदमी के सम्मान की बात है। अपने अंदर और अपने कुटुंब के अंदर किफायतदारी, किफायतशीलता पैदा कीजिए।
कोई भी आदमी एक पैसा बेकार न खर्च करने पाए, खर्च करने के लिए ढेरों काम पड़े हुए हैं। जो पैसा आप विलासिता के लिए खर्च करते हैं वह ज्ञानवृद्धि के लिए खर्च करना चाहिए, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए खर्च करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए ढेरों पैसा चाहिए, फिर आपको लग्जरी के लिए यह पैसा कहाँ से आ जाता है। आप कोका कोला कहाँ से पी लेते हैं? सवा रुपये का छाछ आप अपने बच्चों को नहीं पिला सकते।
नहीं साहब, हम पान खाएंगे।
आप कैसे पान खा सकते हैं?
बेटे, क्या करना पड़ेगा? आपको किफायतसारी बनना पड़ेगा। सादा जीवन, उच्च विचार की परंपराएं पैदा कीजिए। मैं यही योगाभ्यास पढ़ाता हूँ।
बेटे, यह योग है। तू समझता नहीं है, प्राणायाम योग नहीं है। योग वह है जिसमें आदमी को 24 घंटे अपने को शिकंजे में कसना पड़ता है।
किफायतशीलता एक, सहकारिता को ऑपरेशन दो।
आप स्त्री के काम में मदद कीजिए, स्त्री आपके काम में मदद करेगी। आप बाप के काम में मदद कीजिए, बाप आपके काम में मदद करेगा। सारे घर में एक आदमी बैठा हुआ है और हुक्म चलाता है।
बेटे, हुक्म नहीं चलाएगा, सब आदमी मिलजुल कर काम करेंगे।
प्यार करने वाली बात, एक दूसरे का सम्मान करने वाली बात ऐसी है कि यदि आप छोटे बच्चे से भी प्यार से भरी हुई बात कहेंगे तो बच्चे आपके साथ सम्मान करना सीखेंगे। यह परंपरा है। यहाँ से जाने के बाद आप यदि माली बन करके जाएंगे तो असंख्य विचार आपके पास आएंगे। जैसे कि हम शरीर के माली हैं, हम अपने कुटुंब के माली हैं, हम अपने मोहल्ले के माली हैं। माली की हैसियत जब आप बना लेंगे तो पाएंगे कि आपको बहुत कुछ करना है।
मित्रों, जब आप यहाँ से जाया तो कम से कम यह विचार लेकर के जाया कि हम अपना अंतिम जीवन वानप्रस्थ का जीवन, संन्यास का जीवन जिएंगे। छिपकली का जीवन, चूहे का जीवन आप मत जीना। इनका जीवन बड़ा घिनौना होता है।
जिस घर में पैदा हुए हैं उसी घर में मरेंगे भी, आप ऐसा मत करना। पेड़ पर फल जब पक जाता है तब डाली पर से टूट पड़ता है और वह कहीं और बीज पैदा करने के लिए, किसी मरीज के काम आने के लिए कहीं चला जाता है, पेड़ पर नहीं रहता। आप यह निश्चय करना कि हमको अंतिम जीवन उसी घर में रहकर नहीं मरना है जहाँ कि आप पैदा हुए थे। बादल समुद्र में से पैदा होते हैं पर समुद्र में बरसते नहीं। वे खेतों में बरसते हैं, पहाड़ों पर बरसते हैं और कहीं बरसते हैं। आप यह करना कि अपने भावी जीवन को लोकमंगल के लिए, देशहित के लिए, परमार्थ के लिए, भारतीय धर्म और संस्कृति की परंपराओं का निर्वाह करने के लिए खर्च करने की प्रतिज्ञा करके जाना।
पता नहीं दोबारा मौका आएगा कि नहीं आएगा।
आप अपने दिमाग से यह बात निकाल देना कि अभी और बच्चे पैदा करना है। अभी माँ इधर बच्चे पैदा कर रही है और बेटी उधर बच्चे पैदा कर रही है। क्या कहूँ, इनको हया और शर्म नहीं आती है। इस तरीके से मित्रों, आप तो बच्चे पैदा करते हैं, फिर आप किस तरीके से संन्यास की, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपराओं को निभा सकते हैं?
आपका तो यह ख्याल है कि सारी संपदा बेटों को देना चाहिए।
चार बेटे हैं, चारों को बर्बाद दे दिया।
प्रोविडेंट फंड का 20,000 रुपया आया था, चारों को 5,000 रुपये कर्ण की तरह से बांट दिया।
और पड़ोसियों को?
गुरुजी,
पड़ोसियों को नहीं दिया, सब बेटों को देने से ही नहीं चलेगा।
इससे तो आप भौतिकतावादी हो जाते तो अच्छा होता।
नहीं साहब,
बेटे को ही दूंगा। धूर्त कहीं का, बेटे को देगा।
और किसी को देगा कि नहीं देगा?
किसी को नहीं दूंगा।
तो फिर एक काम कर, बेटे से ले। क्या करना पड़ेगा? बेटे की बाबत में बहुत कड़वी बात आपको सुना सकता हूँ।
अगर आपको बेटों को सही बनाना है, उनका भविष्य आध्यात्मिकता का बनाना है, तो आपको यहाँ से बदलना पड़ेगा।
इससे कम में गुजारा नहीं हो सकता।
बेटे ने मैट्रिक पास कर लिया और पिताजी के पास आया। पिताजी,
अब हमें क्या करना चाहिए? बेटे, जैसे हमने किया था, मैट्रिक तक हमारे बाप ने पढ़ाया था, फिर हमने नौकरी की और अपने आप पढ़े। आप भी ऐसा ही कीजिए। नहीं पिताजी, हमसे नहीं होगा। पिताजी ने कहा कि बेटे, अब तुम 18-20 साल के हो गए हो, अब हम तुमको किसी से कर्ज दिला सकते हैं पढ़ने के लिए।
बस तुमको पढ़ लिख कर बाद में हमारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। हाँ पिताजी, वापस कर देंगे।
50 रुपये महीने देना शुरू कर दिया और कहा कि बेटे ध्यान रखना, ब्याह तब करना जब यह कर्ज चाहे जिसका भी हो, चाहे मेरा ही क्यों न हो, पैसा वापस कर देना।
अच्छा पिताजी, यही करूँगा।
लड़के ने 3 साल में BA कर लिया और बाद में 100 रुपये की नौकरी कर ली।
50 रुपये महीना पिताजी को देने लगा और 50 रुपये में अपना गुजारा करने लगा। फिर नंबर 2 वाला बच्चा आ गया।
उसने कहा कि पिताजी, जो आपने बड़े भाई के साथ जो व्यवहार किया है, हमारे साथ भी कर सकते हैं। बेटे उसी शर्त पर कर सकते हैं कि तू हमारा पैसा रिफंड करेगा।
हाँ पिताजी, स्वीकार है। उन्होंने उसके लिए भी व्यवस्था कर दी।
बड़े बेटे से जो पैसा आया उसे दूसरे को देना शुरू कर दिया।
दूसरे का आया तो तीसरे को देना शुरू कर दिया।
तीनों ने BA तक पढ़ाई कर ली, नौकरी कर ली। उन्होंने पढ़ाई के लिए जो रुपया दिया था रिफंड वापस ले लिया और महिला शाखा बनाकर उसमें लगा दिया।
मित्रों, अगर आपको अध्यात्मवादी बनना हो, शांति पानी हो, भारतीय धर्म और संस्कृति की परंपरा का निर्वाह करना हो, जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का भजन करना हो, तो अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा।
इसको भजन नहीं कहते हैं, जिसमें आप माला को इधर उधर कर लेते हैं। यह कोई भजन नहीं है। भजन वह है जिसमें हमारे जीवन की क्रियाएं बदल जाती हैं, हमारा स्वरूप बदल जाता है। बेटे, भजन वह है जिसमें हम लोकहित के लिए, देश के लिए, धर्म और संस्कृति के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे कम में कोई भजन नहीं हो सकता।
नहीं साहब, माला घुमाने को भजन कहते हैं।
बेटे, माला घुमाना कोई भजन नहीं है।
अगर माला भजन रही होती तो माला बेचने वाले सब अब तक धर्मात्मा हो गए होते और अब तक बैकुंठ को चले गए होते। माला धर्म नहीं है, जीवन के स्वरूप को बदल देना धर्म है। आप यहाँ से तैयारी कीजिए, अपने भावी जीवन की तैयारी कीजिए।
इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
आपको अपने कुटुंब के संबंध में, बच्चों के संबंध में अपने दृष्टिकोण बदलने पड़ेंगे।
बच्चों की संख्या बढ़ाना बंद कीजिए, जितने हैं उतने काफी हैं।
नहीं हुआ है तो आप मौसी का ले लीजिए, किसी गरीब का बच्चा ले लीजिए, पिछड़े आदमियों का ले लीजिए।
बच्चे का पालन ही तो करेंगे ना?
नहीं साहब, हमको पिंडदान कौन देगा? बेटे, हनुमान जी को पिंडदान नहीं मिला था।
पिंडदान नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं साहब, हम तो बच्चा पैदा करेंगे।
मित्रों,
क्या करना चाहिए? अगर आपने नहीं किया है तो बंद कर दीजिए, और अगर किया है तो उन पर विराम लगा दीजिए और उनको सिखाना शुरू कीजिए कि बेटे, आपको हमको देना है। अगर आप रिफंड नहीं करेंगे तो हम अपने और आपके छोटे भाई को कैसे चुकाएंगे? आप हमारा कर्ज मत मारना, नहीं तो अगले जन्म में तू बनेगा गधा और हम बनेंगे धोबी, और मारे डिंडों के तेरी कमर तोड़ देंगे और सब वसूल कर लेंगे।
नहीं साहब, आप हमारे बाप हैं। बाप हैं तो जरूर वसूल करेंगे, और अगले जन्म में तुझे गधा बनाएंगे, खच्चर बनाएंगे और तेरा तेल निकाल लेंगे।
नहीं, आप हमारे पिताजी हैं।
नहीं बेटे, हम कोई पिताजी नहीं हैं। यहाँ न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी का बाप है। हर आदमी को अपनी मशक्कत से खाना चाहिए और अपनी मशक्कत से देना चाहिए। मित्रों,
आप अपने कुटुंबियों के बारे में अपने दृष्टिकोण में हेर फेर कर लें तो शायद आप आध्यात्मिक जीवन जीने के अधिकारी हो सके, और शायद अंतिम जीवन में आपकी वह आकांक्षा पूरी हो सके जो हमारी हुई।
बच्चों को संपदा देने की अपेक्षा आप उनको स्वावलंबी बनाइए, अपने पांव पर खड़े होने वाला बनाइए। अगर वे कमाने खाने लायक हो गए हैं तो उनको देना बंद कीजिए।
अगर वे कमाने खाने लायक नहीं हुए हैं तो दीजिए तो सही, पर साथ ही यह कहिए कि इस कर्ज को आपको चुकाना है, अपनी बहन को, अपनी भावच को, अपनी माँ को इनको रिफंड करना पड़ेगा।
आप बच्चों को रिफंड करना सिखाए।
नहीं साहब, हम तो बेटे को देंगे। अगर आपकी यही नीयत बनी रही और आपकी यह अक्ल बनी रही तो देख लेना, आप अध्यात्मवाद से लाखों मील दूर बने रहेंगे।
आध्यात्मिकता का लाभ और आध्यात्मिकता का आनंद और आध्यात्मिकता का चमत्कार आपको नहीं मिलेगा।
आपका घटियापन आध्यात्मिकता का सफाया कर देगा, और आपका यह वहम की पूजा पाठ करके हम अमुक चीज पा सकते हैं आपको किसी काम का नहीं छोड़ेगा। इससे तो आप उतना समय जुआ खेलने में लगाते, चोरी करने में लगाते, उतना समय आप व्यायाम करने में लगाते, कुछ काम करते तो आपको कुछ मिल तो सकता था। इसमें आपको क्या मिलेगा?
इसलिए मित्रों, जब आप यहाँ से विदा हो रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने भीतर से कुछ ऐसे हेर फेर करके ले जाएं, अपने चिंतन के संबंध में, दृष्टिकोण के संबंध में, क्रियाकलाप के संबंध में, भावना के संबंध में, भावी जीवन की एक नई रूपरेखा लेकर जाएं, ताकि आपका कायाकल्प हो जाए।
मैंने इसीलिए आपको बुलाया था कि आपका कायाकल्प करके भेजें, आपके जीवन में, आपके चिंतन में सिद्धांतों का, आदर्शों का समावेश हो सके, आपके क्रियाकलाप में सिद्धांतवाद का, आदर्शवाद का समावेश हो सके, जिसका नाम मैंने कायाकल्प रखा है, और जिसको हम माली के उदाहरण से समझाते हैं कि आपको माली बनना चाहिए और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना सीखना चाहिए। दूसरा, मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आपको यह समझाऊं कि यह विशेष समय है, आप विशेष व्यक्ति हैं और आपके पास विशेष कर्तव्य हैं। उनको पूरा करने के लिए अगर आप हिम्मत कर सकते हो, हौसला कर सकते हो, जैसे कि अध्यात्मवादी करते रहे हैं, तो आप अपने बारे में कुछ विचार कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए।
यह दूसरी बात हुई। मित्रों, तीसरी एक और बात थी।
क्या बात थी? मेरी यह इच्छा सदा से थी कि हम और आप दोनों कदाचित मिल सके होते तो कितना अच्छा होता। दो तार होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। जब दोनों तार मिल जाते हैं तो स्पार्क पैदा होता है और करंट चालू हो जाता है।
हम और आप मिल जाते तो अंधे और लंगड़े का उदाहरण हो जाता। अंधा एक नदी को पार करना चाहता था पर उसे दिखाई नहीं पड़ता था।
लंगड़ा उस नदी को पार करना चाहता था पर कर नहीं सकता था क्योंकि उसकी टांगे काम नहीं कर सकती थी। दोनों ने आपस में सलाह की कि हम भी अपूर्ण हैं और आप भी अपूर्ण हैं। हाँ, आप में भी कमी है और हम में भी कमी है,
तो
आइए हम और आप सम्मिलित हो जाएं और मिलजुल कर कुछ काम करना शुरू करें। अंधे की पीठ पर पंगा सवार हो गया।
पंगे ने रास्ता बताया और अंधे ने वजन ढोया।
दोनों ने अपने अपने काम किए और दोनों ने उस नदी को पार कर लिया। मैं चाहता था कि हम और आप मिलकर समय की विभीषिकाओं को पार कर लेते तो कैसा अच्छा होता। कुछ चीजें हमारे पास हैं जो आपके पास नहीं हैं और कुछ चीजें आपके पास हैं जो हमारे पास नहीं। कुछ चीजें हमारे गुरु के पास हैं, हमारे पास नहीं हैं और कुछ चीजें हमारे पास हैं जो हमारे गुरु के पास नहीं हैं। हमारा गुरु हिमालय के कैदखाने में बैठा हुआ है। वह हिमालय से नीचे नहीं आ सकता क्योंकि उसके पास जो नियम, जो मर्यादा, जो कायदे हैं और प्रतिज्ञाएं हैं वे उसी तरह की हैं कि उनको वहीं रहना चाहिए। बेटे, हमारे पास दूसरी चीजें हैं। उनको हमारी चीजें मिलती है और हमको उनकी मिलती हैं। हम दोनों ने अंधे और पंगे का जोड़ा मिला लिया है और हम दोनों मिलकर काम करते हैं।
चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर एक पेयर बना लिया था। जो चीज चाणक्य के पास थी वह चंद्रगुप्त के पास नहीं थी और जो चंद्रगुप्त के पास थी वह चाणक्य के पास नहीं थी।
दोनों ने अपनी अपनी कमियों को समझा और अपना जोड़ा मिला लिया।
जोड़ा मिला लेने के पश्चात बेटे मजा आ गया। चाणक्य भी धन्य हो गया और चंद्रगुप्त भी धन्य हो गया। इसी तरह समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी की जोड़ी थी।
जो चीजें समर्थ गुरु रामदास के पास थी वह शिवाजी के पास नहीं थी और जो चीजें शिवाजी के पास थी वह समर्थ गुरु रामदास के पास नहीं थी। जब दोनों मिलकर एक हो गए तो मजा आ गया।
उन्होंने जमाने को पलटकर रख दिया।
अगर हम और आप लोग मिल गए होते तो कितना अच्छा होता। अभी तो बेटे बन सकता है, कठिन जरूर मालूम पड़ता है क्योंकि हमारी और आपकी मनोभूमियों में जमीन आसमान का फर्क है। आप हमको जिस हैसियत से देखते हैं और हम आपको जिस हैसियत से देखते हैं उसमें समानता के रिश्ते नहीं बन सकते। यहाँ से जाने के बाद आप कोशिश करना कि जो बातें कहीं और समझाई गई हैं उन्हें हृदयंगम कर सकें और उन्हें आत्मसात करके जीवन को तदनुरूप ढाल सकें, तभी हमारी और आपकी जोड़ी बन सकती है और हम और आप जीवन धन्य बना सकते हैं।
आज की बात समाप्त। ओम शांति।